عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام روحانی علاج اور استخارہ آپ کی کالز ہوتی ہیں, آپ کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں, استخارے بھی کیے جاتے ہیں اور الحمدللہ عزوجل ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور الحمدللہ عزوجل ناظرین کے لیے کئی ہمارے ناظرین ہوتے ہیں جو دعاؤں کے حوالے سے کہتے ہیں, تو خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے اور بالعموم دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت الحمدللہ عزوجل دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ جس طرح روحانی علاج کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, مصائب یہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں, تو دعا بھی ایک ذریعہ ہے پریشانیوں سے نکلنے کا, مشکلات کے حل کا, کہ بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ پاک دعائیں بھی قبول فرماتا ہے, دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, روحانی علاج ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں. درود پاک کی فضیلت میں عرض کروں پھر آپ کی کالز میں شامل کروں گا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک 100 مرتبہ درود پاک پڑھے, 100 بار درود شریف پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا, 70 آخرت کی ہوں گی اور 30 دنیا کی. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ناظرین شامل کرنے لگا ہوں آپ کی کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے گا.
شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک جگہ جاب کرتا ہوں, جو میری سیلری ہے وہ مہینہ پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے, پیسوں میں برکت نہیں ہے, جو ہاتھ میں آتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل ہو تو بتا دیں کہ پیسہ رکا رہے اور برکت بھی رہے, اور دعا کی بھی عرض ہے آپ سے.
صحیح, انشاءاللہ الکریم رکن شورا سے ابھی معلوم کریں گے. دیگر ناظرین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ بھی شامل رہیے گا. پیسے میں برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے, پیسہ رکا رہے, برکت رہے, کسی کے محتاجی نہ رہے, کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے, اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم معلومات ابھی کریں گے رکن شورا سے. نیکسٹ کال دیجیے.
میرے گھر میں میری والدہ بھی بیمار ہے, میری بیوی بھی بیمار ہے, اس کے کھان کا بھی مسئلہ ہے اور وہ میرے بھائی بھی جو ہے نا وہ بھی بیمار ہے.
اللہ پاک شفا عطا فرمائے, ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے.
مجھے اپنے والد صاحب کا استخارہ کروانا ہے, وہ اکثر ہر ہفتے میں بیمار ہو جاتے ہیں نا. میرے والد صاحب کا نام حاجی فرید ہے, ان کی والدہ کا نام عائشہ ہے.
صحیح, نیکسٹ کال دیجیے گا.
کیونکہ میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھی, آج کل کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے, ذرا کرانا چاہتا ہوں. والدہ کا نام ہے خورشید بی بی.
اللہ پاک آسانی فرمائے, جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے, ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال.
میں اپنی نا سسٹر کے لیے بیسکلی یہ پوچھنا تھا, وہ تقریباً 4-5 سال سے بیمار ہیں, ذہنی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر شیزوفرینیا کہتے ہیں, اور دوائی بھی وہ کھا رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی افاقہ نہیں ہو رہا.
اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے, اور انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں, روحانی علاج بھی شیزوفینیا کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے. ایک یہ نفسیاتی مرض ہوتا ہے نا, جس میں عموماً بہکی بہکی باتیں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں, خیالات آتے ہیں, اور عجیب و غریب جو ہے نا یہ چیزیں باتیں یہ ذہن میں گردش کرتی رہتی ہیں, اور لگتا ایسا ہے کہ اس پر جنات کے معاملات ہو چکے ہیں, حالانکہ یہ ہوتی نفسیاتی بیماری. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے, اس کے حل کے لیے انشاءاللہ الکریم وظائف بھی آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ کال دیجیے نا.
کہ ہمارے گھر میں رشتے وغیرہ آتے ہیں لیکن وہ پھر ہو جاتے ہیں تو ہونے کے بعد پھر ٹوٹ جاتے ہیں, کیا ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں؟
صحیح, اللہ پاک آسانی فرمائے, ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال.
میرا نام محبوب عالم ہے, والدہ کا نام پیار بانو ہے, کہیں بھی جاب روزگار نہیں لگتا, اس کا کوئی استخارہ کر کے بتائیں مجھے.
صحیح, استخارہ بھی کرواتے ہیں. استخارے فیصل بھائی فرما لیجئے کہ یہ کالز بھی ہیں. اور یہ سوال آیا تھا ناظرین کی طرف سے کہ پیسے میں برکت نہیں ہے, پیسہ آتا ہے رکتا نہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم गौर करें तो माशरे में हर दूसरा आदमी तीसरा आदमी इस मामले में मुब्तला है, जो बिलखसूस जो जॉब करते हैं ना उनके साथ ये मसाइल लेते हैं कि महीना पूरा होने से पहले ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं, सैलरी पूरी हो जाती है, फिर जैसे ही महीने का इख्तिताम होता है ना, अब वो या तो कर्जा लेते हैं किसी से या फिर जहाँ जॉब कर रहे होते हैं वहाँ से एडवांस वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, इस तरह के मामलात रहते हैं। तो किफ़ायत शियारी भी कैसे हासिल हो, पैसा भी कैसे रुका रहे, बरकत भी रहे, तो इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मामला तो कई लोगों के साथ है और इस तरह की कॉल आती रहती होंगी आपके पास, लोग मिलते भी रहते हैं, दुआओं में भी कहते रहते हैं कि पूरा नहीं हो पा रहा, जो कुछ मिल रहा है जॉब से या अपने कारोबार से उससे जो है महीना पूरे होने से पहले ही जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। देखें, इसमें ख्याल रहे कि माल की ज्यादती और है और बरकत और है।
अच्छा, दोनों में फर्क है।
फर्क है, अब कसरत माल बाज़ औक़ात इंसान को हलाक कर देती है, गुनाहों में डाल देती है, कुफर तक पहुंचा देती है। गरीब आदमी तो जो है वो इतनी ज्यादा अय्याशियां नहीं करेगा माल की वजह से, कि माल ही नहीं है उसके पास। तो बंदे को अल्लाह से माल में बरकत की दुआ करनी चाहिए। अगर बरकत मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला, तो बरकत से दीन और दुनिया में रब ताला की रहमत हासिल होगी। और कसरत से मसा औक़ात जो है वो इंसान खतरे में पड़ सकता है, गुनाह में पड़ सकता है। इसलिए जब भी दुआ मांगे तो माल में बरकत की दुआ मांगिएगा, जब आप इस हालात के अंदर हों वैसे तो। और माल की कसरत के लिए बार बार सवाल करना कि मैं अमीर बन जाऊं, अल्लाह से ये दुआ करें अल्लाह मुझे कनाहत मिल जाए, मेरे माल में बरकत हो जाए, तो ये दोनों बातों का जरा ख्याल कीजिएगा कि बरकत और कसरत में जरा फर्क है। बरकत मिल जाएगी इंशाल्लाह, थोड़ा माल भी होगा ना तो इंशाल्लाह आपका पूरा हो जाएगा। और इसके लिए रूहानी इलाज के ताल्लुक से अर्ज करूँ, फिर मैं चंद बातें और बजट के ताल्लुक से जो आपने कही
जी,
तो उसके ताल्लुक से भी चंद बातें अर्ज करूंगा कि सबसे पहले तो फराइज की आप पाबंदी करें, फराइज और वाजिबात की, कि बेनमाजी है अगर नमाज नहीं पढ़ रहा तो फिर बेबरकती का रोना ना रोए वो। हाँ, मसलन जो है वो नमाज छोड़ रहा है, गुनाह कर रहा है, फिर कह रहा है मैं बेबरकत भी हो रही है मेरे माल में। नमाज की, वाजिबात की पाबंदी कीजिए, सिला रहमी कीजिए, और जो है वो चंद मैं वज़ाइफ भी अर्ज कर देता हूँ कि इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए। जी हाँ, इंशाअल्लाह इससे आपके माल में बरकत होगी। अब इस्तग़फ़ार ये आपकी परेशानियाँ दूर कर देगा और इस्तग़फ़ार से आपकी तंगी दूर हो जाएगी, बेबरकती जो पूरा नहीं हो रहा इंशाअल्लाह इससे दूर हो जाएगा। अब इस्तग़फ़ार आपको सैयदुल इस्तग़फ़ार याद नहीं है कि वो नहीं पढ़ पा रहे आप, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम वअतूबु इलैह, ये मुख्तसर इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार ही आप पढ़ सकते हैं। ये भी नहीं याद आप एक तस्बीह अब इस्तग़फ़ार की पढ़ लें, इस वाली इस कलिमात के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ें आप। मामला ये है हमारे साथ, हम चाहते हैं कि पढ़ें भी कुछ ना, अमल भी कुछ ना करें, बस मेरा काम हो जाए यार। तो ये देखें, यानी हम खुद ही कहते हैं कि हरकत में बरकत है।
सही,
तो अपनी जबान को हरकत दें, एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह रोजाना पढ़ा करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से, इस वजीफे की बरकत से, इस्तग़फ़ार की कसरत से आपके बहुत सारे मसाइल हल होंगे। बहुत सारे लोगों को मैं ये दावत दे रहा हूँ, इसमें गौर करें जो चैनल पर देख रहे हैं, दिन भर में कितनी मरतबा हमने इस्तग़फ़ार किया, कितनी मरतबा अल्लाह से हमने तौबा की, जबान से कितने गुनाह हुए, कानों से हुए, निगाहों से हुए, भाई हम उससे पाक होना चाहते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगें। और जो कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं वो इंशाअल्लाह रहमतें उन पर बरसती हैं।
माशाअल्लाह,
इस वजीफे को अपना लें और एक जो है सूरत रोजाना रात को पढ़ लिया करें, सूरह वाकया, इस पढ़ने से इंशाअल्लाह आपको कभी फाका नहीं होगा।
माशाअल्लाह,
तो सूरह वाकया पढ़ लें,
27
सूरह वाकया की तिलावत करें, इंशाअल्लाह रहमान इससे फाका दूर होगा और जो है इस्तग़फ़ार की कसरत करें। इसके अलावा ज़ाहिरी असबाब में जो है जितनी चादर है ना उतने पाँव फैलाएं, होटलिंग भी करनी है, दावतें भी करनी है, रख रखाव भी है, मोबाइल भी महंगा चाहिए, कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए हमें और पूरा भी हो जाए। तो इस वक्त जो महंगाई का जिस दौरे
से बड़े
उसमें बजटिंग करें, जो आप मसलन मैं बात बताऊं, कुछ चीजों में हम कमी कर सकते हैं, पानी में कमी नहीं कर सकते, पानी पूरा पीना है, मगर जो आप जो है फ्राई आइटम खा रहे हैं, तेल की कमी कर दें, जितना तेल आ रहा है ना उससे कम अज कम आधा किलो कम ले लें तो सफर तो पड़ेगा ना आपका।
सही,
तो आप ऐसी अशिया को देखें, पहले पूरा बजट आप देख लें, लिस्ट डाउन करें इसको, कहाँ कहाँ वो चीजें हैं जिसमें मैं कमी कर सकता हूँ। बच्चों के दूध में कमी नहीं करेंगे आप, اپنی ہوٹلنگ میں کمی کر سکتے ہیں آپ, اپنے کپڑوں کو, اپنے لباس جو آپ سلا رہے ہیں اس میں کچھ کمی کر لیں آپ کے جناب وہ والا لباس میں نے نہیں سلانا جو مہنگا والا ہے, یا ایسے ٹیلر کے پاس جا رہے ہیں بہت زیادہ جو میں, تو آپ ان تمام باتوں پر غور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کا بجٹ کم ہوگا. اور یہ مہنگائی کا رونا جو ہے نا ہر دور میں ہے, اگر آپ پچھلے مطلب سالوں میں بھی دیکھیں تو ہر سال یہ بات ہوتی ہے مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہو گئی, تو ہمیں بھی کچھ بدلنا ہوگا مہنگائی کے طور پر. ہماری جیب, موبائل بھی ہمیں مہنگا رکھنا ہے, کام بھی سارے مہنگے کرنے, تو پھر رونا تو یہ جاری رہے گا. یہ وظائف بھی کریں, یعنی استغفار کی کثرت کریں, بجٹ پر نظر ثانی کریں, جن چیزوں میں آپ کمی کر سکتے ہیں نا وہ آپ کمی کر دیں, اور یہ گھر والوں کے ساتھ مل کر کمی کریں گے آپ.
بالکل, آپ کو معاملہ جو ہے نا پڑے گا. بالکل, ماشاء اللہ, بہت اچھی توجہ دلائی. وظائف کے ساتھ ساتھ ان معاملات کو بھی دیکھنا ضروری ہے ناظرین, اپنے اخراجات کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں, ایک ہوتی ہیں خواہشات اور ایک ہوتی ہیں ضروریات. اپنی خواہشات کو یوں سمجھیے کہ قربان کرنا پڑے گا, اور ضروریات کو اپنی فوقیت دیں. جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں, اور جہاں ضرورت ہے وہاں پر آپ لٹائیں. بالکل, اور خواہشات کو قربان کریں گے, ضروریات کو پیش نظر رکھیں گے تو بہت سارے الحمدللہ عزوجل ہمارے اخراجات کنٹرول ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ الکریم کفایت شعاری کے ساتھ چلیں گے تو برکت بھی رہے گی, اور وظائف بھی ماشاءاللہ رکن شورا نے ارشاد فرمائے اس کے مطابق عمل کیجئے گا. بڑھیں گے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں, آپ کے جوابات بیان کیے جائیں گے. جی فیصل بھائی, استخارے ہو گئے ماشاء اللہ.
جی الحمد للہ. ہمارے حاجی فرید بھائی تھے, والدہ کا نام جو ہے وہ عائشہ بتایا تھا, جو کہ ہر ہفتے بتا رہے تھے کہ بیمار ہو جاتے ہیں. استخارہ آپ کا کیا ہے, استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے, کوئی جادو بندش ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بیماری دور ہو جائے, آپ صحت یاب ہو جائیں, اس کے حوالے سے آپ رانی علاج نوٹ کر لیں, اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ بیماری دور ہوگی. روزانہ آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے 3 دن تک یہ پڑھ کے یہ عمل کرنا ہے, انشاءاللہ الکریم آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یاسین بھائی تھے ہمارے دوسرے, والدہ کا نام کرشید, بتایا تھا کام کے حوالے سے پریشان تھے کہ کام ہے لیکن چل نہیں رہا. آپ کبھی استخارہ کیے؟ استخارے میں کوئی روحانی معاملہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا کام اچھا چلے, آپ کے روزگار میں برکت ہو جائے, جائز روزگار میں آپ کا برکت ہو جائے, تو اس کے حوالے سے آپ روحانی علاج نوٹ کریں. آپ کا جو بھی جائز کاروبار ہے اس پہ آپ جو ہے ایک سادہ پیج لے کے 35 مرتبہ بسم اللہ شریف لکھ کر آپ جو ہے پلاسٹک کوٹنگ کرا کر کام کی جگہ پہ آپ لگا دیں, انشاءاللہ الکریم کام میں خوب برکت ہوگی. ایک اور استخارہ کا کہ بیمار بھی ہیں اور کان کے حوالے سے بھی مسئلہ تھا, آپ کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے. کان کے حوالے سے آپ روحانی علاج نوٹ کر لیں. کان میں درد ہو, کان میں پس آ جاتا ہو, ریشہ پڑ گیا ہو, دانے وغیرہ ہو گئے ہوں, تو اس کے حوالے سے روحانی علاج ہے, آپ عمل کریں, انشاءاللہ کان کا درد وغیرہ ختم ہو جائے گا. یا سمیعو 21 مرتبہ یہ آپ پڑھ کر کان پر دم کریں یا کسی سے دم کروا لیں, انشاءاللہ الکریم کان کا درد ختم ہو جائے گا.
21 مرتبہ پڑھنا. اور کان کے حوالے سے ایک بڑی پیاری میں روایت سناؤں. اب جیسے وظیفہ آپ نے فرمایا, اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کسی کو چھینک آئے نا اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے اور اپنی زبان کو اپنے داڑھوں پر پھیر لے تو داڑھوں کا درد, دانتوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کانوں کے درد سے بھی محفوظ رہے گا. تو ناظرین جب بھی چھینک آئے تو یہ وظیفہ بھی کر لیں, اور سنت بھی ہے نا, جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا سنت مبارکہ ہے, تو اپنی زبان کو اپنے ہی داڑھوں پر دانتوں پر پھیر لیا کریں. 2 فوائد حاصل ہوں گے, ایک تو دانتوں کا درد یہ بھی ختم ہو جائے گا, اور ماشاء اللہ کانوں کے جو بھی امراض ہوئے نا, یہ قوت سماعت کا مسئلہ ہوا یا سماعت کمزور ہو گئی ہے, بعض وقت پیپ آنا شروع ہو جاتا ہے, درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, کسی کا پردہ پھٹ جاتا ہے, تو ان تمام امراض میں الحمدللہ فائدہ حاصل ہوگا. جی مزید بھی ہیں جواب.
دو رہ گئے ہیں. محبوب بھائی تھے ہمارے, جوب کے حوالے سے پریشان تھے کہ جوب نہیں لگ رہی نا, اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا, استخارے میں آزمائش کی طرف معاملہ ہے, کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. آپ کو جائز روزگار مل جائے, آپ کی جاب لگ جائے, اس حوالے سے روحانی علاج آپ نوٹ کر رہے ہیں, اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ آپ کی جائز جو ہے جاب لگ جائے گی انشاءاللہ الکریم. آپ 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کیجئے گا مکروہ وقت کے علاوہ, 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ اسی جگہ بیٹھے رہیے گا, آپ وظیفہ پڑھیے گا 182 مرتبہ یا لطیفو یہ پڑھ کر آپ جاب کے لیے دعا کریں, انشاءاللہ الکریم آپ کو جائز روزگار مل جائے گا انشاءاللہ. رشتوں کے حوالے سے بھی ایک استخارہ تھا کہ رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں, استخارہ کیا ہے, استخارے میں نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے, رشتوں میں رکاوٹ ہو, بندش ہو, اس حوالے سے آپ روحانی علاج نوٹ کریں. और करें और इसके बाद दुआ भी करें अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रिश्ता आएगा।
अच्छा, इसकी नजर कैसे उतारेंगे रिश्तों पर, नजरें बद है
इसके लिए वजीफा जो है पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह 60 दफा पढ़ के दम करें इंशाल्लाह नजर का असर खत्म हो जाएगा।
नजरें बद जो है वो रिश्तों पर है या इनके साथ खुद नजर
रिश्तों पर है,
रिश्तों पर भी नजरें बद
सही। तो ये इसके लिए एक और अमल भी मैं अर्ज कर देता हूँ, नमाज फजर के बाद 312 मरतबा या ज़ुल जलाल वल इकराम ये आप पढ़ने का मामूल बनाए और पढ़कर दुआ करें इंशाल्लाह अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आएगा
माशाल्लाह। तो ये ताहुसुले मुराद आपने पढ़ना है। मजीद यहाँ ये भी अर्ज करूंगा कि कईयों को माशाल्लाह जवाबात भी दिए गए और रूहानी इलाज भी बताए गए। कई अमराज ऐसे होते हैं कि जिसका बाकायदा मुकम्मल आपको इलाज भी करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप रूहानी इलाज के बस्तों से भी राब्ता कीजिएगा, तावीदात अत्तारिया हासिल कीजिएगा, अल्लाह की रहमत से मसाइल हल होते चले जाएंगे, बीमारियाँ दूर होंगी। मगर ये बात याद रखिएगा कि शिफा फकत मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह पाक चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। आइए नाज़रीन शामिल करने लगा हूँ मजीद आपकी कॉल। जी चलाइएगा।
सवाल अर्ज है सही साहब की बारगाह में, अपने शुरू से पूछना था कि बच्चे जो हैं यूजुअली खाते नहीं हैं या बच्चों को भूख ही नहीं लगती, एक तो ये कि इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या ये बीमारी है और बच्चों को ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि बच्चों को भूख भी लगे खाना भी खाएं, इस हवाले से कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। उमर अत्तारी कैलिफोर्निया से अर्ज कर रहा था।
जी उमेर भाई, ये रहता है बच्चों के साथ मसला, वजूहात क्या हैं ये तो रुकने शुरा से हम अभी मालूम करते हैं। आप भी शामिल रहिएगा, देकर हमारे नाज़रीन कई मैसेजेस भी आते हैं, मेल्स भी आती हैं, कॉल्स भी आती हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते, भूखी नहीं लगती। अब क्या वजह क्या है, बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, पेट खराब है या इनका अपना ही कोई मसला है, तो ये सारी मालूमात जानने के लिए भी रुकिएगा कुछ देर सिलसिले में, इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सारे मालूमात भी हासिल होगी और आपके ये बच्चों का मसला भी इंशाअल्लाहुल करीम हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी मजीद कॉल लीजिएगा।
मैंने इस्तखारा करवाना अपने दो दोस्तों का जो कारोबार के हवाले से बहुत ही परेशान है, कारोबार ठप हुआ पड़ा है। एक का नाम रियाज और वालिदा का नाम बख्तुमाई और दूसरे भाई का नाम है अजमल और वालिदा का नाम है मुमताज बीबी। तो इनका इस्तखारा कर दें और कोई वजह भी बता दें कारोबार की बरकत के लिए।
सही, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा।
मेरा नाम शुएब मुस्तफ़ा अत्तारी है और मेरी वालदा का नाम जैनब मई है। मैंने इस्तखारा कराना है औलाद के हवाले से कि तकरीबन एक साल होने वाला है शादी को, औलाद का कोई हल नहीं निकल रहा।
मैसेजेस भी काफी सारे हैं हजूर, ये उमेर भाई हैं, इन्होंने यूएसए से कॉल की है, बच्चों के हवाले से इन्होंने कहा है और ये तकरीबन वालदेन की शिकायत रहती है। इस तरह की कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी काफी आते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते, क्या ये कोई बीमारी है या इनका अपना ही कोई मसला है बच्चों का?
देखिए उमेर भाई ने कई वालिदैन की तर्जुमानी की है
जी,
उन बच्चों के वालिदैन जिनके बच्चे खाना नहीं खाते और वालिदैन जो है वो कहते रहते हैं सूख कर काटा हो रहा है यार, ये तो अब उसमें जो सूरत हाल है उसमें जो असबाब है ना उस पर गौर करना है। सबसे ज्यादा इसमें बुनियादी अगर बात कहें तो माँ का बड़ा अमल दखल है।
अच्छा,
क्योंकि ज्यादा माँ बच्चे के साथ अटैच होती है, ज्यादातर वक्त वालिद से ज्यादा माँ का वक्त जो है वो बच्चों के साथ गुजरता है। अब अगर जो है वो मिर्च मसालेदार चीजें खाने से पहले उनको खिला दी जाएगी, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस वक्त तो ऑन कॉल पर सब चीज है,
बिल्कुल
अपने जो है ऑनलाइन जो है, बल्कि अब वालिदैन तो बात की बात है, इससे पहले बच्चे ही इतने जो है वो मोबाइल में इंटरेस्ट लेने लगे कि वो ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा भाई घर पर चीज आ गई, किसने मंगाई? वो मैंने अबू ये काम कर दिया। अब आपने आदत पहले खुद बनाई कि जनाब आपने पिज्जा मंगवा लिया, आपने पेस्ट्रियां मंगवा ली, आपने मुख्तलिफ चिप्स मंगवा लिया, तो ये चीजें अगर आप बच्चों को खिला रहे हैं तो फिर भूख कहाँ से लगनी है उनको? मिर्च मसालों का आदत आप पड़ गई बच्चों को तो अब घर का खाना कैसे खाएंगे वो? तो इसमें कोशिश ये करनी चाहिए। अच्छा, इसमें फिर सिर्फ यही नहीं होता, जब बर्गर आएगा या इसके साथ साथ अगर उन्होंने पिज्जा मंगवाया तो फिर सॉफ्ट ड्रिंक तो आनी है, बोतलें भी पी रहे हैं, और अब इसके बाद जब खाना बनेगा तो बच्चे कहेंगे मुझे तो
भूख नहीं है,
भूख नहीं है। कई घरों में ऐसा होता है, ये गरीब घरों में भी होता है कि वो बाजार से जाकर जो है वो आलू के चिप्स लेकर आ जाते हैं,
बहुत चल रही होती है।
अच्छा, वो जो अब वो वही ऑयल है उसी से वो 10 घंटे से उसी में या 6 घंटे से उसी में फ्राई हो रहे हैं वो। अब बताएं कि उस ऑयल का हाल क्या हुआ होगा, उससे जो चिप्स तले गए हैं उसका हाल क्या होगा?
तो
ये जो जाहिरी असबाब है, जाहिरी मामलात हैं, बच्चों को इन खुसूसन खाने के वक्त से पहले आप ये चीजें आप इनको बिल्कुल ना खिलाएं, वरना आपके बच्चे खाने जो आपने बनाए वो उसके आदि नहीं बनेंगे। तो मैंने पहली बात कही कि माँ को चाहिए, उनके वालिदैन को चाहिए कि वो इन चीज़ों से बचे। फिर मशरूबात हैं, मुख्तलिफ किस्म के टेट्रापैक जो है वो जूस आ रहे हैं, उनके आदि बनाए हुए उस वक्त, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में साइट्रिक एसिड होता है, गले खराब होते हैं, बच्चे बुखार में मुबतला हो जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों से बच्चों को बचाना चाहिए। सेकेंड ये कि वालिदैन के लिए हिदायत है कि बच्चों की पसंद क्या है। एक बच्चा अंडा पसंद करता है और आप उसको पराठा बना के खिला रहे हैं, तो जो पसंद है ना, और वो चीज अगर कोई इसको नीली नुकसान दे नहीं है तो वो खिलाएं। जैसे अगर सुबह नाश्ते में उनको अंडे बॉयल करके खिलाएं तो बच्चों के लिए बड़ी।
बाद औकात ये भी होता है ना कि बच्चों की फरमाइशें, बच्चों की ख्वाहिशात के आगे वालिदैन हथियार डाल देते हैं। अब मजबूरन क्या करें, बच्चा तो रो रहा है, जिद कर रहा है, मंगवा के तो देना पड़ेगा,
हथियार
से फिर बच्चों के
हथियार कैसे डाल रहे हैं, खाना ही खिला रहे हैं। अगर बच्चों को कुछ छोटा मोटा मर्ज हो गया ना, खुद ही इलाज कर रहे हैं। और अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उसने पाकिस्तान का कोई नंबर दिया था गालमन दुनिया में कि जो अस खुद इलाज करने वालों में
अच्छा
स्टॉक होता है दवाइयों का घर के अंदर। बच्चे को नजला हुआ और डॉक्टर के पूछे बगैर उसको दवाई
दे दी दवाई,
बच्चा सो नहीं रहा तो सोने के लिए दवाई दे दी। ये भी ज्यादती है। नींद की कमी बच्चों का मेदा डिस्टर्ब कर देगी और बच्चों को भूख लगने में प्रॉब्लम होगी फिर।
अच्छा ये तो वजूहात हो, अब इसका हल क्या आखिर? अब बच्चों को लाना तो है ना, आप उनको खिला
देखिए, उनके लिए तो वालिदैन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो चीजें आप अपने ग्रोसरी में नहीं लेकर आए, ऐसे जूसेस नहीं लेकर आए। मैं तो ये मशवरा भी दूंगा, छोटे बच्चों को आप बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं जब ग्रोसरी खरीदने जाते हैं उनको साथ भी ना लेके जाए, वरना वो अपनी फरमाइशें वहां करते हैं। अच्छा आप जो आपका बजट भी आउट होगा इस तरह, एक तो इन बातों पर अमल करें, फिर उन चीजों से बच्चों को आप बचाने की कोशिश करें कि ऑनलाइन चीजें ना मंगाएं। कभी आपने कोई चीज मंगा ली ठीक है, मगर आदि कर दिया आपने बच्चों को तो फिर ये शिकायत आपकी फिर जो है एक्सेप्ट नहीं होगी। बच्चा भूख जो है वो खाना घर का बना होगा नहीं खाएगा।
बच्चों की पसंद फरमाइए।
हल जो रूहानी इलाज मैं करूँ वो रूहानी इलाज इंशाल्लाह रहमान मैंने बोर्ड पर दिया हुआ है। आपने करना क्या है, ये आयत करीमा जो लिखी हुई है
जी
ठीक है, ये आयत करीमा आपने एक चीनी की प्लेट पर लिखनी है।
सही
ठीक है। अच्छा साइन पेन जो होते हैं ना, साइन पेन वो उमन साइन करने के लिए और बच्चे भी यूज करते हैं, जो मार्कर ये तो बहुत बड़ा मार्कर है, यानी ये इसकी लिखाई बहुत गहरी होगी, तो बिल्कुल साइन पेन छोटे होते हैं बच्चे यूज करते हैं, उससे भी आप ये लिख सकते हैं। और ये कुरानी आयत आप चीनी की प्लेट पर लिखें और इसके बाद इसको पानी में डालकर पिए। तीन मरतबा आपने अमल करना है, सुबह में, दोपहर में और शाम में। अच्छा इसका ख्याल करना है, बावजूद लिखें आप लव कानल बाहरु मिदाद लिकलिमाती रब्बी। ये पारा नंबर 16 सूरह काफ की आयत नंबर 109 है ठीक है। ये आपने चीनी के प्लेट पर लिखनी है या मोमी कागज होता है जो, उस पर चाहे तो आप उसे लिखें और पानी में डालें उसको, उसका पानी पी लें आप, या प्लेट पर लिखें। तीन मरतबा आपने ये अमल करना है दिन के अंदर, सुबह दोपहर शाम। चंद दिनों थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, ये एराब लगाने की आपको हाजत नहीं है ठीक है। आयत नंबर आप देख लें, सूरत है सूरे कहफ आयत नंबर 109। तो ये आप इसको चाहें तो इसका आप फोटो भी ले लें, इंशाल्लाह रहमान बच्चों को आप ये पिलाएंगे ना तो उनकी भूख खुल जाएगी और इंशाल्लाह रहमान शिफायाबी होगी। इसके अलावा चाहें तो इसका आप तावीज बना लें। जी हाँ, इसको लव कान अल बहरु मिदाद लिकलिमात रब्बी, इसका तावीज बनाकर आप जो है वो दाएं बाजू पर बच्चों को पहना दें, इंशाल्लाह रहमान इससे भी बच्चे की भूख खुल जाएगी और इंशाल्लाह शिफा हासिल होगा।
तो दो, ये दो तरीके आपने इरशाद फरमाए, एक तो पीने के लिए और दूसरा तावीज के लिए माशा,
और उसके लिए मोम जामा जरूरी है। जाहिर है जो एक तावीज बनाने का तरीका है, प्लास्टिक के अंदर इसकी कोटिंग करते हैं ताकि बच्चा अगर वॉशरूम वगैरह जा रहा है तो उसमें भी, और गुस्ल कर रहे हैं तब भी उसमें उतारने की हाजत नहीं रहेगी।
सही। अच्छा ये जो माशाल्लाह आपने वजीफा इरशाद फरमाया ना, एक तो भूख भी लगेगी, इसकी एक और खसूसियत है वो मैं अर्ज करूं बापू कि देखें अगर किसी का मैदा खराब है ना, जिगर का मसला है, जिगर बाद औकात बहुत सारे अमराज लग जाते हैं, मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, या गुर्दों का मसला होता है, डायलिसिस होती है मरीजों को, गुर्दे में पथरी आ जाती है, तो यही तरीका है कार जो रुकनेश्वरा ने अभी इरशाद फरमाया, इसी तरीका है कार के मुताबिक अगर वो मरीज भी अमल करेगा ना कि लिख कर और पानी डालकर इसमें सुबह दोपहर शाम तीन टाइम पिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसका जिगर ठीक हो जाएगा, मैदे के अमराज दूर हो जाएंगे और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अगर गुर्दे में पथरी हुई तो वो पथरी भी निकल जाएगी माशाल्लाह, और भूख लगने के हवाले से भी माशाल्लाह ये अमल कर सकते। अब ये क्योंकि वालदेन को करना पड़ेगा, बच्चे छोटे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, नौ मौलूद बच्चे हैं, उनके साथ भी इस तरह का मामला है, तो आप बच्चों को ये तावीज पहना दीजिए और ये लिखकर प्लेटों पर आए थे मुबारक का पानी डालकर पिलाइएगा माशाल्लाह। अच्छा बढ़ेंगे नाज़रीन अब आपके इस्तिखारों के जवाब की जानिब। जी फैसल भाई,
हमारे अय्याज भाई और अजमल भाई ये दोनों आपस में काम वगैरह करते हैं, इस हवाले से इस्तिखारा करवाना चाह रहे थे। इस्तिखारा किए, इस्तिखारे में कोई रूहानी मामला आपके साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, आपका कारोबार चले, आपके कारोबार में बरकत हो, इस हवाले से आप रूहानी इलाज करें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फजर की नमाज के बाद 300 मरतबा या वहाब ये आप पढ़ें, दोनों पढ़ें इंशाल्लाह उल करीम आपके काम में बरकत होगी। और अगर कोई दुकान वगैरह है तो 35 दफ़ा एक सफ़े पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिख कर आप लगा लें काम की जगह पर, इंशाल्लाह इससे भी खूब बरकत होगी। शुएब भाई थे हमारे, औलाद के हवाले से इस्तिखारा करवाया चाह रहे थे कि औलाद नहीं है, काफ़ी देर हो चुकी है शादी को, तो देखें इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में कोई जादू बंदिश ऐसा कोई मामला नहीं है, आजमाइश की तरफ मामला है, आप साहिब औलाद हो जाएं, अल्लाह आपको नेक औलाद अता फरमाए। इस हवाले से आप दोनों मियाँ बीवी यह वजीफ़ा करें, 101 मरतबा सूरतुल कौसर ये आप दोनों रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाए, इंशाअल्लाह उल करीम साहिब औलाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला
माशाअल्लाह। अच्छा ये एक मैसेज ये भी आया है कि ये रक्षा लेना चाह रहे हैं, लेना बेहतर है या नहीं, नाम है इनका मोहम्मद यासीन और वालदा का नाम है ज़ैनब बीबी, इस हवाले से भी बताइएगा। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं आपके कॉल। जी चलाइएगा कॉल।
रुकने शुरा सैयद साहब से अर्ज है, मेरा एक मसला है वो ये कि चेहरे के दाग धब्बे खत्म कैसे होंगे, नेज वजीफा इरशाद फरमा दें या कोई हल हो तो इरशाद फरमा दीजिए। दूसरा मेरी खुद की और घर वालों की और बच्चों की तबीयत खराब है, बुखार नजला जुकाम वगैरह, इसका भी कोई वजीफा हो तो इरशाद फरमा दी।
अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, दुआ भी करवाते हैं और इसका वजीफा भी इंशाल्लाह मालूम करते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिए ना।
जफर अली नाम है, वालदा का नाम है हाजरा, और मसला ये है कि कारोबार के अफराद कोई भी नजर नहीं आ रहे, कहीं भी जाते हैं जॉब के लिए या कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा।
सही, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, आपको हलाल और आसान रोजगार नसीब फरमाए, इस्तिखारा भी करवाते हैं जफर अली भाई आपका। हुजूर ये चेहरे पर अगर दाग धब्बे निकल आए तो बाद औकात एहसास कमतरी में भी लोग मुब्तला हो जाते हैं, बड़ी आजमाइश भी होती है, शर्मिंदगी भी होती है, क्या इसका हल है कि चेहरा रोशन मुनव्वर साफ शफाफ चमकता दमकता इस तरह का हो जाए। जी
मैं एक मशवरा उनको दूंगा और सबके लिए, ज्यादा आईना देखने से ना आदमी ज्यादा नफसियाती हो जाता है।
अच्छा
तो आईने को भी कम देखें, फिर जो है वो इस तरह की जो है एहसास कमतरी में जो है मुब्तला हो जाता है, तो चेहरे पर दाग धब्बे से नफसियाती तौर पर परेशानी तो होती है, मगर हकीकत में ये परेशान होने की बात नहीं है, बल्कि मकाम शुक्र है कि सिर्फ चेहरे पर दाग धब्बे हैं, चेहरे पर जख्म नहीं है। अगर इसकी जगह जख्म होते तो फिर क्या सूरत हाल होती। तो बस ये देखें कि जिनके चेहरे पर जख्म है या जो किसी ऐसी मर्ज में मुब्तला है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मुझे वो मर्ज तो नहीं है, तो आप परेशान ना हो। अच्छा बाज अपनी नींद पर भी गौर करें के बास की आंखों के नीचे हल्के बन जाते हैं, बहुत गहरे होते चले जाते हैं और जवानी है बिल्कुल, तो वो नींद पूरी नहीं हो रही होती, बाज़ों का मोबाइल का बहुत कसरत से इस्तेमाल है, टीवी देखने का या ऐसा कंप्यूटर पर बैठने का बहुत तवील आपका दौरानिया है कि आप उसमें ब्रेक ही नहीं ले रहे, तो आपके चेहरे पर उसके असरात पड़ेंगे। तो इबादत से तहज्जुद के नूर से इंशाअल्लाह रहमान चेहरे के अंदर रोशनी भी होगी इंशाअल्लाह रहमान। और एक वजीफा अर्ज करता हूँ, उसे आपको फायदा हासिल होगा कि आप रोजाना जो है या नूरो 15 मरतबा पढ़ लें और दोनों हाथों पर दम करें, या नूरो 15 दफा पढ़कर आप अपने चेहरे पर मल लें, इससे इंशाअल्लाह फायदा हासिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी नूर अता फरमा दे, इबादत का नूर अता फरमा।
आमीन आमीन। दुआ भी करें, चेहरा भी रोशन हो और हमारा दिल भी रोशन और मुनव्वर हो जाए, कल कयामत के दिन जब कई चेहरे ऐसे होंगे कि जो सियाह होंगे, तो उसके लिए भी हमने दुआ करनी चाहिए। जब वजू बनाए ना नासरी, एक बेहतरीन दुआ मैं अर्ज करूँ, जब भी वजू बनाए तो चेहरा जब हम धोते हैं तो उस वक्त ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा बय्यद वजही यौमा तबयदु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, ए अल्लाह मेरे चेहरे को रोशन और मुनव्वर फरमा उस दिन जिस दिन कई चेहरे सियाह होंगे, अल्लाह पाक उस दिन हमारे चेहरे को रोशन और मुनव्वर फरमाए। और वजीफा भी आपके मसले के हल के लिए बता दिया गया, दीगर नाज़रीन भी इस पर अमल कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल दीजिए ना।
मैं मोहम्मद एजाज अनवर कादरी औरंगी टाउन बाबुल मदीना के राजू से बात कर रहा हूँ
जी।
सैयद साहब के आमद में रहा। सैयद साहब की बारगाह में एक सवाल है कि ये जो बहुत ज्यादा खारिश का सिलसिला होता है बच्चों को घर में, तो इसकी क्या हकीकत है, इसका क्या रूहानी इलाज है? और जुनैद से सवाल करना था कि क्या इसके कोई तावीजात भी होते हैं? अगर ऐसा है तो रहनुमाई फरमाए ताकि मुझ जैसे और मजीद ऐसे कोई मरीज हो तो उनकी भी रहनुमाई हो जाए। हमारे घर के अफराद के लिए दुआ फरमाइएगा कि नजर बस से और बीमारी से शिफा मिल जाए, और दुआ फरमा दें कि कोशिश जारी है इसी माह मुबारक में अल्लाह पाक अपने प्यारे घर खाना काबा के तो आपकी सादत और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इबादत हाजिर से बता फरमाए।
माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशी हुई इसमें कि इन्होंने अपने जो मामला था उसको बयान किया, इसके साथ जो दुआ का कहा ना, तो वो मक्के और मदीने जाने के लिए जो है वो दुआ के लिए कहा। कई लोग इस पर दुआ के लिए नहीं कहते, मैंने ये भी देखा मगफरत की दुआ का नहीं भी कहते। अमीर अहले सुन्नत की जात को देखें आप, यानी तहरीर का एंड होगा ना दुआए मगफरत का तालिब,
सुभान अल्लाह सुभान
अल्लाह। तो उनकी सोहबत से किसी से मिलेंगे भी ना तो उनसे आपके मुरीदैन से आप कहते हैं मेरे लिए मगफरत की दुआ कीजिएगा,
सुभान अल्लाह।
बड़ी बात है, और मगफरत से बढ़कर क्या बड़ी बात है, आप गौर करें यार।
तो मगफरत की भी दुआ करनी चाहिए,
मगफरत उसी की जिसका ईमान पर खात्मा होगा।
बेशक बेशक बेशक,
तो बस दुआ करते रहे और मक्के मदीने के लिए, ये तो बहुत ही अच्छी दुआ है।
चले एक कॉल में और शामिल कर लेता हूँ, फिर जवाब इंशाल्लाह आपसे मालूम करेंगे। जी एक कॉल और चलाइए।
मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा सवाल इब्राहिम शाह साहब से है कि मेरे दांतों में बहुत तकलीफ रहती है और जब खाना खाता हूँ तो उस वक्त भी काफी तकलीफ होती है, दांतों में गोश्त की बोटियां भी फंस जाती हैं, काफी आजमाइश होती है। इस हवाले से कोई अमल हो तो इशारत फरमा दीजिएगा और अपनी दुआ में भी याद रखियेगा, जज़ाकअल्लाह खैरा।
सही, एक तो ये हमारे एजाज भाई थे, इन्होंने खारिश के हवाले से कहा, चूंकि वक्त भी कम है ना, तो मैं चाहूंगा कि इसका कोई ऐसा हल इरशाद फरमा दिए, कोई ऐसा जामे इलाज के ये खारिश खत्म हो जाए घर के अफराद से भी, और ये दांतों के दर्द के हवाले से भी कोई अमल इरशाद फरमाइए।
देखिए खारिश जो है वो जो ये एक ऐसा मर्ज है जिसका सबब एलर्जी है, बाज़ औक़ात ये खाने से होती है, बाज़ औक़ात कोई चीज इस्तेमाल करने से है।
अच्छा,
अगर ऐसा लिबास इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे उनकी खारिश बढ़ जाती है, तो ऐसे लिबास को अगर सूती लिबास उसके लिए फायदेमंद है तो फिर वो वॉशिंग वेयर जो कपड़े होते हैं उनसे वो जो है वो बचेंगे। तो कपड़े से भी हो सकती है, खाने पीने की किसी चीज से भी हो सकती है, कोई किसी दवाई से भी आपको एलर्जी हो सकती है, तो ये तो डॉक्टर से आप रुजू करेंगे इंशाअल्लाह रहमान तो आपको पता चलेगा। और जाती तौर पर अगर आपका तजर्बा है कि फला चीज खाता हूँ, जैसे बाज़ लोगों को मछली खाने से खारिश हो जाती है, तो जब ये अमल ज्यादा हो तो उन दिनों तक आप मछली ना खाएं।
सही,
बास को गोश्त से हो जाती है
जी।
तो इस तरह आपने जाहिरी चीजों पर आप गौर करें, उन चीजों से बचेंगे इंशाल्लाह रहमान तो आपकी एलर्जी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। फिर खारिश में खुश खारिश भी होती है और तर भी होती है, बाज लोग खुजाते रहते हैं और जो है वो जख्म पड़ जाते हैं, तो बाकायदा इसका इलाज करना चाहिए। बाज लोग थोड़े दिन तक दवाई लेते हैं इसके बाद छोड़ देते हैं, तो इसका यूनानी इलाज भी जो है मौजूद है और डॉक्टरी इलाज भी मौजूद है, तो जाहिर डॉक्टर से रुजू करके आप जो है इस सूरत में अपनी खारिश का इलाज कर सकते हैं। और तो मैं रूहानी इलाज के ताल्लुक से वो जो हदीस में जो एक दुआ बयान की गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह शाम आप 3 मरतबा इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो खारिश से भी और मूजी जो जानवर हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं है ना, मच्छर और इसी तरह हशरातुल अर्ज हैं जो अजियत दे देते हैं, तो उनसे भी इंशाल्लाह पनाह रहेगी, वो आप पढ़ें 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम, यानी सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले। वो दुआ क्या है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मात मिन शर्रि मा खलक, ये 3 मरतबा पढ़नी है आपने सुबह, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मात मिन शर्रि मा खलक। ये आप इसकी इमेज बना लें, आप फोटो बना लें इसका और फिर अपने स्क्रीन पर इसको ले लें और इसका रिमाइंडर भी लगाए आप इंशाल्लाह, इसके बहुत फायदे हैं। और खुसूसन जो सफर करते रहते हैं ना, वो मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहते हैं, तो अब हमारे एक दोस्त गए थे बैरून मुल्क, उनको एक ऐसे जानवर ने काटा, वो कई सालों तक उनके जिस्म से वो गए नहीं, उसके दाग। तो ऐसे मकाम पर जहाँ आपका जो जो बहुत ज्यादा सफर करते रहते हैं तो वो तो ज्यादा इस कसरत से इसको दुआ को पढ़ें और पाबंदी करें, और यहाँ भी आप इसकी पाबंदी करें, अल्लाह ताला इस अमल के जरिए भी आपको अपनी इस खारिश से भी और एलर्जी से भी अल्लाह ताला बचाएगा
माशाल्लाह। तो ये वजीफा भी आपको बता दिया गया। यहाँ एक मशवरा मैं आपको दूँ नाजरीन, देखिए बच्चों को भी खारिश हो जाती है, बड़ों को भी हो जाती है, घर के मुख्तलिफ अफराद को हो जाती है, कितनी तरह की खारिशें होती हैं, کتنی قسم کی ہوتی ہیں. کچھ سید صاحب نے بھی ماشاءاللہ فرمایا کہ خشک خارش ہوتی ہے, تر خارش ہوتی ہے. اچھا, اس کے کئی دیسی علاج بھی ہیں, کئی گھریلو علاج بھی ہیں. اس کے لیے آپ میرا مشورہ قبول کیجیے گا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت مقاتم العالیہ کی بڑی شاندار کتاب جس کا نام ہے گھریلو علاج, آپ یہ ضرور حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کر لیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, مکمل تفصیل اس میں موجود ہے. اس کی میں جو امیر اہل سنت نے مدنی پھول ارشاد فرمائے نا, اس کے مطابق عمل کر لیجئے گا انشاءاللہ الکریم. آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا, آپ کا الحمدللہ عزوجل خارج کا مسئلہ حل ہو جائے گا. حضور, یہ دانتوں کے حوالے سے بھی ایک اسلامی بھائی معلوم کر رہے تھے, اس کا کیا حل ہے؟ دانتوں میں بعض اوقات بوٹیاں پھنس جاتی ہیں, درد ہوتا ہے, گیپ آ جاتے ہیں, بالخصوص یہ چھالیاں کھانے والے, پان کھانے والے, ان کے عموماً دانت بھی خراب ہوتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے اس کا حل؟
بہترین میں ایک آپ کو ترتیب صورتوں کی بیان کروں گا. روزانہ فطر کی نماز تو ہم پڑھتے ہیں, اس میں کس کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. مگر کیونکہ وقت بہت کم ہے, چند باتیں عرض کرتا ہوں میں دانتوں کے تعلق سے کہ اب تو جوانی میں بچوں کے جو ہیں وہ دانت خراب ہو رہے ہیں. بہت زیادہ جو ہے ٹافی کا استعمال یا ڈرنکس کا استعمال یا اچھا پھر اس طرح بہت سے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد کھلی نہیں کرتے.
صحیح,
تین مرتبہ کم از کم کلی کرنے کا بیان بھی کیا جاتا رہتا ہے, امیر اہل سنت بھی پریکٹیکل بھی بتا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جو ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. سب معمول بنائیں, کھانے کے بعد کلی ضرور کریں, اور ایک جو ہے وہ کلی ایسے کریں کہ اپنے دانتوں میں رس بھی نہ کریں, اپنے دانتوں کے اندر آپ کو یہ جو پانی ہے نا اس کو گھماتے رہیں تاکہ جو ذرات ہیں کھانے کے بعد
وہ
سب کے سب نکل آئیں. خلال بھی کریں انشاءاللہ, اور اسی طرح اگر نیم کی لکڑی کا خلال کریں گے اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. وظیفہ کیا ہے؟ امام اہل سنت نے یہی جو ہے وہ نقل فرمایا ہے. اور ایک واقعہ بھی ہے اس کے اندر کہ ایک صاحب جس کی عمر 100 برس سے کم تھی اپنے دانتوں سے گنا کھا لیتے, اور جب کہتے گنا کھاتا ہوں تو میرے دانتوں جوان بھی اس پر رش کرتے ہیں. تو کسی نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہے وہ وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے اذا جا سورہ نصر پڑھی جائے, دوسری رکعت میں تبت یدا یہ پڑھی جائے, اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے.
صحیح,
اس ترتیب سے آپ وتر پڑھیں گے انشاءاللہ رحمان عمر بھر دانتوں کی تکلیف سے محفوظ رہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تو یہ طریقہ کار دیگر ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. یہ رکشہ لینے کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی نے پوچھا تھا کہ بہتر ہے یا نہیں.
یاسین بھائی تھے ہمارے, رکشے کے حوالے سے تھا, استخارہ کیا, استخارے میں رکشہ ان کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے, دیکھتے ہوئے رکشہ لے
سکتے. صحیح بھائی, ظاہری معاملہ ضرور دیکھیے گا.
ایک اور استخارہ تھا, ظفر بھائی تھے والدہ گنم حاجرہ, بتایا تھا کاروبار کے حوالے سے پریشان تھے کہ جاب وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. استخارہ کیے, استخارے میں کوئی جادو بندش نہیں ہے. آپ کو اچھا روزگار مل جائے اس کے لیے جو ہے نا آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھنے کا معمول بنائے, انشاءاللہ بہترین روزگار مل جائے
انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے, فضل فرمائے. دعاؤں کے حوالے سے بھی کئی اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں, میسیجز بھی آئے ہیں دعاؤں کے حوالے سے. حضور دعا کا وقت ہے, کئی ناظرین منتظر بھی ہوں گے.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگار تیرے بندے مختلف ذرائع سے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, میسیجز کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے. مالک کوئی بیمار ہے, کوئی قرضدار ہے, کوئی بے روزگار ہے, کسی کو مہنگائی نے پریشان کیا ہے, والدین کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں, علاج کروا رہے ہیں, شفا یابی نہیں ہو رہی. اے کریم, تیرے بندے آج کئی جو ہیں دعا میں شامل ہوں گے, اس وقت بھی شامل ہیں مولا, نام بھی بھیجے ہیں. اشفاق مدنی بھائی, انہوں نے اپنے والدین کے لیے, سعید بھائی نے اپنے کان کے مرض کی شفا کے لیے, محبوب بھائی بے روزگاری سے نجات ملے, عمیر بھائی نے بچوں کے حوالے سے کہی ہے کہ ترجمانی کی, شعیب مصطفیٰ, عبد الوکیل, اعجاز, ظفر علی, اے اللہ یہ جتنے بندے ہیں اور جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں اور جو نہیں ہیں مولا, جو بھی پریشان حال ہیں, اے اللہ کرم کر دے, فضل کر دے, بیماروں کو شفا دے دے, مقروضوں کو بارے قرض سے نجات دے دے. ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما اور سکون چین نصیب فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
عطا کر دے تو سے صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.